ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिति। श्रीमद्भागवतम स्कंद 8 अध्याय 22 और श्लोक संख्या है 33। इंद्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तुते सुतलं स्वर्गीभिः प्रार्थ्यं जातिभिः परिवारिता। इंद्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तुते सुतलं स्वर्गीभिः प्रार्थ्यं ज्ञातिभिः परिवार्तितः। इंद्रसेन हे महाराज भलि, महाराज हे राजा याहि जाओ, भोः हे राजा भद्रं कल्याण, अस्तु हो ते तुम्हारा सुतलं सुतलोक में स्वर्ग भी देवताओं द्वारा प्रार्थ्यम वांछित ज्ञाति भी कुटुंबियों द्वारा परिवारितः घिरे हुए। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की हे बलि महाराज, दोहराइए इंद्रसेन, तुम उस सुतल लोक में जाओ जिसकी कामना देवता भी करते हैं, वहां अपने मित्रों तथा संबंधियों की संगति में शांति पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तात्पर्य सुनिए केवल। जैसा कि स्वर्गी भी प्रार्थ्यम शब्दों से सूचित होता है, सुतल लोक स्वर्ग लोक से सैकड़ों गुना अच्छा है जहां बलि महाराज को भेजा गया। जब भगवान अपने भक्त को ऐश्वर्य से भीन करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान उसे दरिद्र बना देते हैं, प्रत्युत वे उसे उच्चतर पद प्रदान करते हैं। भगवान ने बलि महाराज को अपने कुटुंब से विलग होने के लिए नहीं कहा, अपितु उन्हें अपने कुटुंबियों के साथ ठहरने की अनुमति प्रदान की। ज्ञाति भी परिवारितः। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः गदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हे बलि महाराज इंद्रसेन, तुम उस सुतल लोक में जाओ जिसकी कामना देवता भी करते हैं। वहां अपने मित्रों तथा संबंधियों की संगति में शांति पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। कौन कह रहे हैं ये? किसको कह रहे हैं? हमें भी कह रहे हैं कि अगर आप ठीक ठीक से भक्ति करेंगे तो कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जोड़ने की आवश्यकता है। श्री रूप गोस्वामी ने ही बताया है, अनासक्त से विषयान यथारम उपयुंजिता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। यानी कि जिसका संबंध कृष्ण से है, कृष्ण की सेवा पे जिसको लगाया जा सकता है, उसको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। और विषयों से लेकर अनासक्त होकर, अनासक्त से विषयान, तो बलि महाराज को यहां पे सुतल लोक दे रहे हैं। स्वर्ग लोक से भी अधिक सैकड़ों गुना वहां पे सुख है, ऐश्वर्य है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं सुतल लोक का सुख। लेकिन बलि महाराज, क्योंकि ये भी एक महाजन है 12 महाजनों से, तो बलि महाराज ऐसे स्वर्ग लोक के सुख से किंचित भी बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे महादेव शिव जी कहते हैं, नारायण परायण सर्वे ना कुतश्चन भिव्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु तुल्यार्थ अपि दर्शना। स्वर्ग लोक में जाए या नरक लोक में जाए, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, नारायण परायण जो हैं, वो भयभीत नहीं होते हैं। स्वर्ग लोक में जाने से भयभीत नहीं होते। स्वर्ग लोक में भी भय है, किस चीज का भय है? किसका भय है स्वर्ग लोक में? भोग ऐश्वर्य का भय, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरत चेत साम व्यवस्यात्मिका बुद्धि समाधो न विद्य थे, समाधो न विद्य थे। वहां पे आप समाधि में नहीं जा सकते हैं। कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूप से रथ होना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। स्वर्णलोक में जो ऐश्वर्य है, भोग ऐश्वर्य है, बहुत प्रबल है। सुतलोक में भी ऐसे ही, सुतलोक में सैकड़ों गुना देखे वहां सुख। लेकिन बलि महाराज को फिर भी वहां भेज रहे भगवान महावन देव, क्योंकि वो जानते हैं कि बलि महाराज जो है वो बुद्धिमान व्यक्ति है, भोग और ऐश्वर्य से वो आसक्त नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में भी वो मेरी सेवा में लगे रहे, मेरा चिंतन करते रहेंगे। तो जैसे शिव जी महादेव भी कह रहे हैं श्रीमद भागवत में एक जगह कह रहे हैं कि कौन वो विद्वान व्यक्ति होगा जो नहीं चाहेगा भगवान की सेवा को। जो विद्वान है वास्तव में वो भगवान की सेवा निश्चित रूप से करना चाहता है, और इसलिए ब्रह्मा जी जैसे देवी देवतागण भी, मनु, ये सब भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से रत है। हालांकि उनकी आयु इतनी लंबी है, ब्रह्मा जी की आयु बताते 31 नील है ना, नीली कहते हैं ना, 311 ट्रिलियन 40 बिलियन अर्थ ईयर्स, 31 नील 40 खरब साल, ऐसी कुछ बोलते हैं हिंदी में, जो भी है मतलब इंग्लिश में तो ठीक बताया हमने, हिंदी में आप समझ जाइए। 311 ट्रिलियन 40 बिलियन अर्थ ईयर्स, ये ब्रह्मा जी की आयु है। और मनु एक मनमंत्र तक रहते हैं, चतुरु युग 71 बार, आप उसको गुणा कर लीजिए 71 टाइम्स, 4 साइकिल जो है युग के, ये एक मनु की आयु है। और इतने लंबे समय तक होने के बावजूद भी, इतनी लंबी आयु होने के बावजूद भी ये भगवान की सेवा में बड़ी गंभीरता से लगे। इस गणेश गोपी प्राण ठाकुर ने बताया था एक बार अपने प्रवचन में कि प्रातःकाल 8 बजे तक वो सारा जो व्यवस्था का कार्य है वो कर लेते हैं ब्रह्मा जी, उसके बाद फिर वो भजन में लग जाते हैं। सो एक्सपर्ट, 8 बजे तक ही उनका मैनेजमेंट होता है, यूनिवर्सल मैनेजमेंट, उसके बाद फिर वो अपना भजन में लग जाते हैं। तो ब्रह्मा जी, मनु, बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवी देवतागण, ये सब भगवान की सेवा में रहता। और हमारी आयु तो कितनी कम है, और कलयुग में तो और भी कम है। प्रायण अल्पायुषः, बहुत आयु कम है कलयुग में, तो हमें कितना गंभीर होना चाहिए भक्ति में, कृष्ण की सेवा। तो गंभीरता का मतलब है, गंभीरता का मतलब है कि ऐसे गंभीर भक्तों के संग में रहना जो गंभीरता से भक्ति करते हैं। भगवान शब्द यही कह रहे हैं, मह सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ति तमो द्वाराम योषिताम संगी संगम। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त है, किसी व्यवस्था में रहते हुए असक्त नहीं होते हैं, और ऐसे भक्तों का जब संग करेंगे, उनकी कृपा से हम भी अनासक्त होकर किसी भी परिस्थिति में कृष्ण की सेवा कर पाए। महत् सेवा द्वारम, ये महत् सेवा करने से क्या होता है, मुक्ति का द्वार खुल जाता है। और जो विषयों से असक्त है, ऐसे लोगों का संग करने से क्या होता है, नरक का द्वार खुल जाता है, ऐसा भगवान ऋषभ देव बता रहे हैं। तो भगवान ऋषभ देव ये भी बता रहे हैं कि जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, भले वो गृहस्थ आश्रम में क्यों ना हो, पारिवारिक जीवन क्यों ना बिता रहे हों, परिवार के साथ रह रहे हों, पत्नी और बच्चों के साथ भले वो क्यों ना रह रहे हों, फिर भी वो जो है शुद्ध भक्ति से च्युत नहीं होते हैं, फिर भी वो शुद्ध भक्ति कर पाते हैं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी। कौन? जो भगवान के शुद्ध भक्त है। और शुद्ध भक्त जो नहीं है, वो कहीं भी रहकर भी शुद्ध भक्ति नहीं कर पाते हैं, उनको करवाना पड़ता है शुद्ध भक्ति गुरु के मार्गदर्शन में और वरिष्ठ वैष्णव के मार्गदर्शन में। शुद्ध भक्ति करवाई जाती है, कर नहीं सकते स्वयं, स्वयं ही शुद्ध भक्ति में कर लूंगा, स्वयं कुछ नहीं होता है इस संसार में और कलयुग में तो होता ही नहीं है, इसलिए आश्रित रहना पड़ता है। हमने एक कार्यक्रम शुरू किया आश्रय, इसी उद्देश्य से शुरू किया था कि किसी ना किसी के आश्रय में आपको रहना पड़ेगा, अकेले मत घूमो, नहीं, भक्तों के संग में रहो। तो भक्तों के जब सान्निध्य में रहते हैं तो ये वैराग हम लोग सीखते हैं, वैराग विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थ में एकम पुरुष पुराणा श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुधिर यस्तम अहम प्रबद्धे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, चैतन्य महाप्रभु के लिए कहा है सर्वपटाचार्य ने, वैराग्य विद्या सिखाने आए श्री चैतन्य महाप्रभु। ये वैराग पंथ है हमारा, ये पंथ कौन सा है, ये रास्ता कौन सा है, ये वैराग का रास्ता है। महाप्रभु भक्त कनेर वैराग्य प्रधान, महाप्रभु के भक्तों में वैराग्य देखा गया है, गृहस्थ आश्रम में भले क्यों ना हो। तो किसी को लाइसेंस नहीं मिला है इस संसार में रहने के लिए, तो गृहस्थ आश्रम में भी है तो तभी हमें वैराग का अभ्यास करना होगा, ये बहुत आवश्यक है। और ब्रह्मचारियों के लिए तो अनिवार्य है, उनके लिए और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम और सन्यास आश्रम तो ये वैराग का ही आश्रम है, तो इसमें वर्जित है संग्रह करना, ब्रह्मचारी आश्रम में संग्रह करना वर्जित है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यमश्च शर्भीर भक्ति विनश्यति, ये तो सबके लिए है, सभी आश्रम के लिए, लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम के लिए तो अनिवार्य है। तो यहां पे बलि महाराज जो है उनका सौभाग्य है कि सुतल लोक में जा रहे हैं, फिर भी जो है वो भूले नहीं है भगवान। और यही बात अर्जुन को भी भगवान कह रहे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धश्च, हर परिस्थिति में हर अवस्था में जो है मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो इसी तरह से भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को कहा, 100 पुत्र थे भगवान ऋषभ देव के, उनको कहा कि आप सब भरत महाराज की शरण में रहो, भरत महाराज की पूजा करो, भरत महाराज की आराधना करो, उनका संग प्राप्त करो। तो उनके पुत्रों ने कहा, ये कैसे संभव है, हम तो सब एक बराबर हैं, भाई हैं हम सब, तो उनकी पूजा कैसे करें, भाई की पूजा कैसे करें। उन्होंने कहा, भौतिक दृष्टि से मत देखो अपने भाई को, अपने भ्राता को, भौतिक दृष्टि से मत देखो, भरत महाराज जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी आराधना करो, उनकी पूजा करो, क्योंकि अगर आप उनकी पूजा करोगे तो मेरी ही पूजा कर रहे हो। भगवान ऋषभदेव ने कहा, किनको कहा, अपने पुत्रों को कहा। ओ, कहने का ये है कि अगर परिवार में कोई भक्त है तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, और हमारे अगर परिवार के सदस्य हमारे रिश्तेदार अगर वो भक्त हैं तो उन्हें उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा तो सबकी करनी चाहिए लेकिन विशेष रूप से अगर कोई भक्त है तो उनका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। भले हम ब्रह्मचारी आश्रम में क्यों ना आ गए हो, अगर कोई हमारे परिवार के सदस्य रिश्तेदार माता पिता भाई बंधु अगर वो भक्त है तो विशेष रूप से उनका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भक्त का कोई वास्तव में आश्रम नहीं होता है। जानते हैं जो भक्त है, भक्त का मतलब जो भक्त बोल रहे हैं तो मतलब वैष्णव वो नहीं जो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, भक्त मतलब भक्त शुद्ध भक्त। तो वैष्णव का कोई आश्रम नहीं होता है लेकिन फिर भी वो आश्रम को स्वीकार करते हैं, समाज की स्थिति को बिगाड़ते नहीं है। तो ऐसे जो वैष्णव हैं वो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी अनासक्त रहते हैं, लेकिन इस गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जो कोई ब्रह्मचारी अगर ग्रस्त बनना चाहता है भविष्य में, उसको फिर भी ब्रह्मचारी आश्रम में रहना पड़ेगा। किसके लिए? प्रशिक्षण लेने के लिए, प्रशिक्षित होने के लिए। कोई ब्रह्मचारी ग्रस्त बन जाता है तो निश्चित रूप से हम दुखी होते हैं, लेकिन अगर वो बन गया है ग्रस्त तो ग्रस्त आश्रम के नियमों का पालन करना हो। लेकिन उससे पहले ब्रह्मचारी आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने इंद्रियों के ऊपर उसको संयम रखना पड़ेगा, अपने मन को सही दिशा दिखानी पड़ेगी, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, गुरु के आदेश अनुसार जो है अपने जीवन को बिताना होगा। तो जैसे जो प्रशिक्षित हो जाएगा जो ब्रह्मचारी, तो क्या होगा अगर भविष्य में वो ग्रस्त बन भी जाता है तो ग्रस्त बनते हुए भी वो ग्रस्त आश्रम के नियमों का पालन कर पाएगा। लेकिन कभी जो ब्रह्मचारी रहा ही नहीं है बचपन से ही, या कभी बनने की इच्छा भी नहीं की है, अगर वो अगर ग्रस्त बन जाता है तो अस्त हो जाएगा, उसका आध्यात्मिक जीवन अस्त हो जाएगा, वो ग्रस्त नहीं बन पाएगा, वो गृहभेदी बन जाएगा। उसके जीवन का लक्ष्य क्या होगा? फिर इंद्रिय तृप्ति होगा। न्यूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा यत इंद्रिय प्रीति आपनोती, तो वो इंद्र तृप्ति में फिर लग जाएगा, बोल भूल जाएगा जीवन का लक्ष्य क्या है। एक था ऐसी, आज से कई साल पहले इस्कॉन की सामना करने से पहले, श्रील प्रभुपाद जी से पहले, उनके गुरु महाराज के समय की बात, एक ब्रह्मचारी जो है वो आश्रम में था और आश्रम के नियमों का पालन नहीं करता था, किसी की बात सुनता नहीं था, और संस्कारों के कारण, अपने प्रारब्ध के कारण, और विशेष कारण था अपराधों के कारण उसको पारिवारिक जीवन अपनाना पड़ा। और पारिवारिक जीवन जब से अपना लिया तो फिर जिससे विवाह किया था वो कुछ समय के बाद वो बीमार पड़ गई, उनकी पत्नी जो है बीमार पड़ गई, और इनको तो नौकरी करनी ही थी, जब ये पारिवारिक जीवन में प्रवेश कर गए तो इनको भी नौकरी करनी पड़ी फिर। लेकिन बीमार वो पति जो है बीमार हो गए, पत्नी क्योंकि बीमार हो गई, अब ऑफिस जाए तो दफ्तर में बॉस की फटकार, उसकी डांट, उसका प्रेशर, और जब घर आता था तो वो पत्नी की सेवा करता था, तो दिन रात लगा रहता था बेचारा घरे की तरह, दिन में ऑफिस और घर में फिर पत्नी की सेवा, कुकिंग करना, पत्नी के कपड़े धोना, दवाइयां दिलवाना, डॉक्टर के पास लेके जाना, और फिर बच्चे भी हैं, चुन्नू मुन्नू भी थे, वो भी बड़े हो गए, उनको भी स्कूल भेजना है, उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी है, सारा अकेला करता था बेचारा। लेकिन जब आश्रम में तो किसी की बात नहीं सुनता था, और वो बेचारा एक दिन रोता रोता आया मंदिर, और रो रहा था, भक्तों के सामने गिड़गड़ाया और दंडवत किया उसने सबको, उसने कहा मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब मुझे अनुभव हो रहा है माया मुझे अनुभव करवा रही है, अब मैं एहसास कर रहा हूं कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी, कितना बड़ा आनंद, कितना बड़ा सुख था वहां पे, लेकिन उसको लात मार के मैंने माया को स्वीकार कर लिया और माया के डंडे पड़ रहे हर क्षण मुझे, और कहीं का ना रहे, कहीं का भी नहीं रहा मैं, ना घर का और ना घाट का, ये हालत हो गई उसकी। तो ये हो जाता है। तो देखिए, हम लोगों को बड़ा स्पष्ट होना चाहिए हम करना क्या चाहते हैं। गृहस्थ जीवन में है तो गृहस्थ आश्रम की तरह रहे, ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी आश्रम की तरह रहे, क्योंकि फिर नहीं तो गड़बड़ हो जाए। कोई एक आश्रम तो स्वीकार करना होगा, पशु नहीं बन के रह सकते आप, वो आश्रम तो स्वीकार करना हो, या तो वैष्णव हो या वर्णाश्रम धर्म में हो, बीच का कोई रास्ता नहीं है, बीच का रास्ता कोई है ही नहीं, ये मनुष्य जीवन है। तो यहां पे हाँ, अब जैसे देखिए, प्रजापति दक्ष ने भी अपने पुत्रों को भेजा था प्रशिक्षण के लिए, 10,000 जो उनकी संतानें थी उनको भी भेजा तपस्या करने के लिए, तपस्या करो पहले गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले खूब तपस्या करो, इसके लिए भेजा। ले गए वो, नारद जी की कृपा हो गई, नारद जी नारायण नारायण करते करते उन्होंने भक्त बना दिया उनको, उनके हृदय में वैराग उत्पन्न हो गया, और जब विवाह का समय आया तो उन्होंने मना कर दिया, कौन सा विवाह कैसे विवाह। तो बेचारे बड़े क्रोधित हुए प्रजापति दक्ष, और उसके बाद फिर और 1,000 संतानें हुई, उनको भी भेजा। देखिए, नियम का पालन किया फिर भी उन्होंने, ऐसा नहीं कि 10,000 संतान जो है वो भक्त बन गए, वैराग का जीवन अपना लिया है तो और बच्चों को नहीं भेजेंगे तपस्या करने के लिए, नहीं, भेजा उन्होंने, उनको भी भेजा। और भेजने के बाद फिर क्या हुआ, नारद जी ने फिर उनको भक्त बना दिया, प्रजापति दक्ष नारद जी को शाप दे दिया। ये बात है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत आवश्यक है हमारे लिए समझना कि बिना तपस्या के, बिना इंद्रियों को संयम किए, यानी कि अगर हम पारिवारिक जीवन में प्रवेश कर जाते हैं तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है हमारे लिए। घटना तो है ही लेकिन दुर्घटना भी होगी, और फिर हम अपना जीवन बेकार कर लेंगे, कहीं के भी नहीं रहे, कोलू के बैल की तरह घूमते रहेंगे, कुएं के पास जो है बांध के रख देते हैं बैल को और उसकी नाक से रस्सी निकालते हैं, और वो बैल जो है, बैल या भैंस भी देखा है तो वो कुएं के इर्द गिर्द घूमता रहता है, बैल घूमता रहता है, वैसे घूमते रहेंगे हम लोग। और एक और घटना आती है जिसमें महाराज प्रियव्रत वो गंगावारण पर्वत में तपस्या कर रहे हैं। प्रियव्रत महाराज की कथा आती है भागवत के 4th स्कंद में और 5th स्कंद में भी थोड़ा सा वर्णन है शुरू के अध्याय में। तो महाराज प्रियव्रत ये पुत्र थे किसके, स्वयंभू मनु के, उनकी 2 संतानें थी, महाराज प्रियव्रत और महाराज उत्तानपाद, और महाराज उत्तानपाद के पुत्र हुए महाराज ध्रुव महाराज। तो ब्रह्मा जी के पुत्र है स्वयंभू मनु। तो स्वयंभू मनु ने महाराज प्रियव्रत को प्रार्थना की कि आइए आप राजा बनिए, राज्य संभालिए। उन्होंने इनकार कर दिया, मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई मैं झंझट में नहीं फंस रहा हूं, मेरे तपस्या करने थे, मेरे भजन करना बस। ठीक है, एक रास्ता अपनाया उन्होंने महाराज प्रियव्रत ने, घोर तपस्या में लग गए वो, और इस कारण से जो है महाराज उत्तानपाद को जो है साम्राज्य दिया गया, और उनके वंश में फिर आगे ध्रुव महाराज के आगे और भी वंश परंपरा उनकी आगे बढ़ी, और आगे चलकर प्रचेताओं ने, महाराज प्राचीनी भरिषद के जो पुत्र है प्रचेता गणों ने भी जो है राज्य किया, और प्रचेताओं से फिर प्रजापति दक्ष हुए, और प्रजापति दक्ष भी वो भी तपस्या करने गए। देखिए तपस्या सबने की है। प्रजापति दक्ष, प्रजापति का मतलब ही है जो प्रजा उत्पन्न करने वाले, उनका तो कार्य वही है, फिर भी उन्होंने तपस्या की प्रजापति दक्ष ने। देखिए तो वो निकल पड़े थे, तो फिर से क्या करें, फिर जो है आसन खाली, सिंहासन खाली, सिंहासन में, राज सिंहासन में कोई बैठने वाला नहीं है। फिर से उसके बाद फिर जाके महाराज प्रियव्रत को जब कहा गया तो महाराज प्रियव्रत फिर से इनकार कर रहे थे, उन्होंने फिर से इनकार कर दिया। तो फिर ब्रह्मा जी को आना पड़ा उनको बनाने के लिए। तो ब्रह्मा जी भी आए और शिव जी भी आए, ये सब बड़े बड़े देवी देवता आए। ब्रह्मा जी आके महाराज प्रियव्रत को समझाने लगे मुस्कुराते हुए, कृपा दृष्टि की ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि मैं आया हूं आपका ये वैराग है ना, इसको तोड़ने दें। वैराग का जीवन आपने अपना लिया है, लेकिन भगवान की इच्छा है, ये भगवान की आज्ञा है, उनकी अवज्ञा हम नहीं कर सकते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि भगवान की अवज्ञा की जाए। उनका आदेश है कि आप इस राज्य को स्वीकार करें, हमारा प्रिय से कहा। तो कहने का मतलब यह है कि जब भगवान की जब आज्ञा होती है राज्य को स्वीकार करने के लिए, या पद स्वीकार करने के लिए, या फिर परिवार स्वीकार करने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में स्वीकार करना चाहिए क्योंकि ये भगवान की आज्ञा। लाभ क्या होगा? लाभ यह होगा कि आपका जो प्रेम है दिन प्रतिदिन भगवान के लिए और बढ़े। इस पद को स्वीकार करते हुए भी आप इस बंधन में फंसेंगे नहीं। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात, जब भगवान की आज्ञा को स्वीकार कर लेते हैं हम, और उस पद को स्वीकार कर लेते हैं या जिम्मेदारी ले लेते हैं भगवान के लिए, कृष्ण के लिए, तो ऐसी जो जिम्मेदारी है वो आप बंधन में बांधेगी नहीं, बल्कि आपका जो समर्पण है और आपकी जो सेवा है, आपका जो आकर्षण है कृष्ण के लिए, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, ये लाभ है। तो इसलिए जिम्मेदारियों से हमें कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। कई बार होता है कि भक्त तैयार नहीं होते हैं कि व्यवस्था में कौन फंसेगा, मैनेजमेंट में कौन फंसेगा, जिम्मेदारियां कौन लेगा, नहीं। लेकिन अगर गुरु का आदेश है, भगवान श्री कृष्ण का आदेश है, अर्जुन को जैसे भगवान कह रहे युद्ध करो, अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, कौन फंसेगा ऐसे युद्ध में भाई, मुझे साम्राज्य चाहिए नहीं, मैं स्वर्ग भी नहीं चाहता हूं, मैं क्यों युद्ध करूं? युद्ध किस लिए करते हैं? राज्य प्राप्त करने के लिए। युद्ध किस लिए करते हैं? स्वर्ग जाने के लिए। क्षत्रिय अगर युद्ध भूमि में शरीर छोड़ता है तो स्वर्ग जाएगा, दोनों ही नहीं चाहिए मुझे, मैं क्यों फंसू उसमें? लेकिन अर्जुन अंततः स्वीकार करते हैं, भगवान कृष्ण की आज्ञा को स्वीकार करते हैं, तुम्हें आवश्यक नहीं है, तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, समाज को इसकी आवश्यकता है, प्रजा को इसकी आवश्यकता है, देश को इसकी आवश्यकता है, पूरे संसार को इसकी आवश्यकता है। तुम श्रेष्ठ पुरुष हो, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत् देवतोरो जनाः सयत् प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो धर्म की रक्षा के लिए आपको ये स्वीकार करना होगा, ये जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। आप नहीं चाहते, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। इसे कई बार हमारे भारत भी कहते हैं, जिसको नहीं चाहिए होता है उसी को ही मिलता है, जिसको जिसको नहीं चाहिए होता है उसी को ही मिलता है, और जिसको चाह होती है उसको नहीं मिलता है। क्यों ऐसा भाई? वो इसलिए कि अगर आप चाहते हैं, कुछ इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो पूरी संभावना है कि आप उससे आसक्त भी हो जाए, और फिर आसक्ति को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है काम, आप फंस जाएंगे। नहीं, आसन सिद्धि आपने प्राप्त कर ली, तो आसन सिद्धि में समस्या क्या हो गई? आसन छोड़ते ही नहीं आप, उसी में लगे हुए फंस गया, बंधन में बंध गए। नहीं, और बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर छुड़ाना। जैसे बड़े बड़े नेता, राजनेता क्या करते हैं, जीवन के अंतकाल तक लड़ते ही रहते हैं, चुनाव में भाग लेते ही रहते हैं, छोड़ते ही नहीं सीट, चलने लायक नहीं है, उठने लायक नहीं है, बैठने लायक नहीं है, और फिर भी चुनाव में लड़ रहे हैं। क्यों? आसक्ति के कारण। बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसे जो राजा थे, महाराज प्रियव्रत की तरह, ये सब राज ऋषि हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा दिया गया उनको राज्य है, ये सिंहासन राज सिंहासन है, वो कभी इस बंधन में बंधेंगे नहीं, मतलब ही नहीं बनता। तो इसी तरह से हम देखते हैं द्वारका की बात की जाती है, द्वारका के ऐश्वर्य की बात की जाती है, जहां पे 16,100 पटरानियां हैं भगवान श्री कृष्ण की, और हर महल में इतना ऐश्वर्य है, साक्षात लक्ष्मी निवास कर रही है वहां पे 16,108 महलों में। ऋषिदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका उस ऐश्वर्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, न भगवान श्री कृष्ण में पड़ता है, न उनके शुद्ध भक्तों में पड़ता है। शुद्ध भक्त भी जो है प्रभावित नहीं होते हैं इस ऐश्वर्य से, भले कितना बड़ा परिवार क्यों ना हो, कितना बड़ा परिवार भगवान श्री कृष्ण का, एक एक पत्नी से जो है 10 संतानें हुई और की 10 संतानें हुई, ऐसे 16,108 पटरानियां, कितना बड़ा परिवार है देखिए, 16,108 महल है, यदुवंश इतना विशाल यदुवंश, और कृष्ण जो है फिर भी जो है बिल्कुल विरक्त। और तो और उनके भक्त भी, ये द्वारका की लीला है। सुदामा जी जो है बहुत गरीब ब्राह्मण है और बचपन में संदीपनी मुनि के आश्रम में कृष्ण बलराम के साथ संदीपनी मुनि के आश्रम में इन्होंने अध्ययन किया था, प्रशिक्षण लिया था वहां। देखिए ये भी भगवान श्री कृष्ण भी और स्वयं राम लक्ष्मण भी, ये सभी जो है गए थे प्रशिक्षण के लिए गए, इन सबका ब्रह्मचर्य में प्रशिक्षण हुआ, पांडवों का भी प्रशिक्षण हुआ, गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में गए थे ये। इसलिए ये जो थे उस समय के राजा थे उनको बचपन से प्रशिक्षण दिया जाता था कि आगे चलकर आप लोग राज्य करने वाले हैं तो अनासक्त होकर आपको राज्य करना होगा। और सुदामा जी जो है उनके मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं, ब्राह्मण हैं, गरीब हैं बहुत। उनकी पत्नी कहती हैं कि आपके मित्र हैं ना कृष्ण, उनकी पत्नी भी शुद्ध भक्त है, सुदामा जी की पत्नी जो है वो भी शुद्ध भक्त है, लेकिन उनसे देखा नहीं गया सुदामा जी की गरीबी। मन के भीतर में बड़ा दुख होता था उनको, हमेशा सोचती रहती थी कि कैसे होगा, बच्चों के लिए खाने को कुछ नहीं है, पहनने के लिए ठीक कपड़े नहीं है, बहुत दुखी रहते। इसलिए सुदामा जी के दुख को देखकर दुखी रहती थी उनकी पत्नी। तो एक दिन ने कहा कि देखिए कहने वाली बात नहीं है, लेकिन आपके मित्र हैं द्वारकाधीश, आप दोनों एक ही पाठशाला में पढ़े हैं, पूरे पूरा विश्वास है अगर आप उनके पास जाएंगे तो कभी आपको मना नहीं करेंगे, आप उनके पास क्यों नहीं जाते हैं, प्रार्थना क्यों नहीं करते उनके पास जाकर। सुदामा जी ने सोचा कि कैसे जाऊं मैं, लेकिन फिर ठीक है पत्नी भी कह रही है और घर की हालत भी ठीक नहीं है, मन से इच्छा नहीं थी जाने की, लेकिन फिर भी घर के स्थिति को देखकर परिवार की स्थिति को देखकर निकल पड़े सुदामा जी। फिर सोचे कि मैं क्या लेकर, हमारे पास कुछ है ही नहीं ले जाने के लिए, खाली हाथ जाना ठीक नहीं है, तो पड़ोस से चिवड़ा लेकर आ गई उनकी पत्नी और उसको थैली में डाल लिए, पोटली में डाल लिए। सुदामा जी निकल पड़े द्वारकाधीश के महल में, और वहां क्या नियम था कि कोई भी ब्राह्मण आए उसके लिए स्वागत है, महल के सारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं ब्राह्मणों के लिए, कोई रोकेगा नहीं, कोई सैनिक नहीं रोकेगा, कोई भी रोक टोक नहीं होगी। सुदामा जी वहां पहुंच गए द्वारकाधीश से मिलने के लिए, और दूर से भगवान ने देख लिया, राजसिंहासन बैठे हुए थे, द्वारकाधीश ने सुदामा जी को देखा दूर से ही, राजसिंहासन छोड़ा और सुदामा जी की ओर भागे तेजी से, और सुदामा जी की तरफ भागे और सुदामा जी का आलिंगन किया भगवान ने। दोनों रो रहे हैं, अपने बचपन के दिन याद कर रहे हैं कि हम एक साथ स्कूल में पढ़े थे, एक पाठशाला में पढ़े थे, गुरुकुल में हमने ये सीखा था, और याद है हमारे गुरुदेव ने हमें जंगल में भेजा था, बरसात का दिन था, आंधी तूफान सब होने के बावजूद भी हम गए थे लकड़ी लेने के लिए जंगल में, याद है आपको वो दिन। तो इस तरह से चर्चा कर रहे हैं, और उसके बाद फिर सुदामा जी की सेवा करते कृष्ण साक्षात अपने कक्ष में ले गए और अपने ही शैया में बिठा दिया सुदामा जी को। सुदामा जी से एक बात पूछी थी, लेकिन क्या कि मेरे लिए कुछ लेके नहीं आए, कृष्ण पूछ रहे सुदामा जी से, मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आया आप। तो सुदामा जी सोच में पड़ गए, चिवड़ा कैसे दूं मैं, ये खाने लायक चीज थोड़ा है, चिवड़ा तो गरीब का भोजन है, मुंह से उतरता ही नहीं है, और चिवड़ा में अगर विशेष रूप से चटनी ना हो, साथ में कुछ पीने का ना हो, हम तो उसको फिर भी हम लोग पका लेते हैं थोड़ा बहुत हल्दी वगैरह डाल के जो भी है, और मूंगफली भी डालते हैं और कई सारी चीज़ें डालते हैं, और फिर टमाटर की चटनी भी होती है, साथ में एक ग्लास जूस भी होता है, तब वो खाने लायक बनता है कि नहीं, तभी आप भोग लगा सकते हैं। हम सुदामा तो है नहीं कि भोग लगा देंगे खाली चिवड़ा कृष्ण को। तो सुदामा जी लेकिन चिवड़ा देखकर कृष्ण ने छीन लिया उसे, और छीन कर उसको खाने लगे। खाते रहे खाते रहे, और रुक्मणी जी जो है चमर दिखा रही है। सुदामा जी को बिठाया गया शैया में, उनके चरण धोए कृष्ण ने भगवान ने स्वयं अपने अश्रुओं से सुदामा जी के चरण धोए, चरणाभिषेक किया। रोते रोते उनकी गरीबों को देखकर, उनकी हालत देखकर कृष्ण का हृदय जो है बड़ा दुखी हो गया कि मेरा मित्र होकर ये मेरा भक्त है और इतना दुखी है, ये कैसे हो सकता है। और वो खाते जा रहे चूड़ा। रुक्मणी जी ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, आप चिवड़ा इतना खाते जा रहे हैं, जानते क्या हो रहा है, मेरा खजाना खाली होता जा रहा है और आप और लेते जाएंगे तो फिर खजाना में कुछ नहीं रहेगा, सारा धन चला जाएगा, शर चला जाएगा हमारा इनके पास। तो कृष्ण फिर रुक गए। कहने का मतलब ये है कि भगवान देते हैं कितना देते हैं। देखिए सुदामा जी जैसे भक्त को दे रहे हैं भगवान, साक्षात लक्ष्मी जी जो है वह खड़ी हुई है, चामर कर रही है सुदामा जी को। बताइए कि सुदामा जी ने क्या किया है, कृष्ण को खुश कर दिया है। चिवड़ा देकर साक्षात लक्ष्मी जी चामर कर रही हैं। सुन के देखिए ये लाभ होता है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज भी एक बार बोल रहे थे कृष्ण से, उन्होंने कहा कि हे कृष्ण आपसे मैं एक वरदान मांगना चाहता हूं। क्या? मैं चाहता हूं कि जो आपके भक्त है या हम जो है पांडव आपके सखा है, आपके मित्र हैं, मैं चाहता हूं कि आप हमें धन से परिपूर्ण कर दें, बड़ा सा बड़ा साम्राज्य हो, किसी चीज की कमी ना हो हमारे पास, इतना ऐश्वर्य हो हमारे पास, बहुत ऐश्वर्य हो। तो कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर महाराज को कि आप तो मेरे भक्त हो, ये सब क्या मांग रहे हो। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि कोई ये ना कहे कि आपके जो भक्त हैं वो लाचार हो जाते हैं, फकीर बन जाते हैं, गरीब बन जाते हैं। इस बात को गलत साबित करने के लिए मैं आपसे ऐसा मांग रहा हूं, क्योंकि हमने क्या सुना है, जो शिवजी के भक्त हैं, शिवजी पेड़ के नीचे बैठे हैं, उनके भक्त जो है बड़े बड़े महलों में रहते हैं। हमने क्या देखा है, जो कृष्ण के भक्त हैं वो सड़क पर आ जाते हैं, भिखारी बन के घूमते हैं, उनके बाल उनके कपड़े सब छीन जाते हैं, कई गिरे रहते हैं वो, ऐसा हमने देखा है। तो यही है। तो यहां पे सुदामा जी के ऊपर विशेष कृपा हुई। सुदामा जी को देखे सबको दे दिया, और घर जब वापस आए, गांव जब पहुंचे अपने, देखा अरे ये क्या हो गया, ये पति को क्या हो गया, मेरी पति को क्या हो गया, सुसज्जित आभूषणों से महंगे से महंगी साड़ी पहनी हुई है, और उनके साथ कई सारी दासियां भी हैं, उनके भी बहुत पास बहुत महंगे महंगे साड़ियां थी और आभूषण। माताएं बहुत खुश हो रही हैं ये सुनकर, नहीं तो बहुत खुश हो गई देखकर। सुदामा जी देखे अरे ये क्या, ये कहां से मिल गया, और ये हमारा घर है, ये झोपड़ी ना होकर इतना बड़ा महल, ये तो द्वारकाधीश के महल की जैसा लग रहा है, इतना ऐश्वर्य, ये निश्चित रूप से कृष्ण की कृपा है, उन्हीं के द्वारा दिया गया है। देखिए एकदम कृष्ण से याद किया सुदामा जी ने, उसी समय भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, कृष्ण को भूले नहीं। ऐसे भक्तों को भगवान देते हैं जो मिलने पर जो है भगवान को भूलते नहीं। जैसे कि बड़ा अच्छा बताया है चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख। कृष्ण कहते हैं कि मेरा भजन करते हुए विषय सुख मांगता है, ये अमृत छाड़ी अमृत को छोड़ के विषय मांगे, ये अमृत को छोड़कर मैं इसको अमृत देना चाहता हूं, और ये विष की इच्छा कर रहा है, विषय वस्तुओं की इच्छा कर रहा है, ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है। लेकिन याद रहे क्या करने वाला हूं मैं, अभी विज्ञ, मैं तो विज्ञ हूं ना, मैं तो विद्वान हूं, मैं बुद्धू नहीं, ये मूर्ख है। विषय के ना दीबा, मैं इसको क्यों दूंगा विषय सुख, मैं अपना चरणावर्त दूंगा इसको। और विषय वस्तु के लिए जो इनकी इच्छा है आसक्ति है उसको भुला दूंगा, कुछ नहीं रहेगा इनके पास। ध्रुव महाराज को दे दिया भगवान ने सब कुछ, भगवान अपना दर्शन दे दिया। तो ध्रुव महाराज क्या बोलते हैं, साविन कृथार्थे परम नरा छे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो यहां वन में आ गया था कांच के टुकड़ों के लिए, मुझे क्या पता था कि आप मेरे सामने ही रहा है, क्योंकि कृष्ण प्रेम का धन है। इसलिए रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि सबसे धनी व्यक्ति कौन है संसार में। रामानंद राय क्या बोलते हैं, ये सबसे धनी व्यक्ति कौन है, जिसके पास राधा कृष्ण का प्रेम है, जिसके पास राधा कृष्ण का प्रेम है, जिसके पास नाम का प्रेम है, जिसके पास नाम की रुचि है, वो असली धनी व्यक्ति है। ये सनातन गोस्वामी जीवन ठाकुर को कहते हैं, ये ले लो पारस पत्थर कूड़े दान में रखा हुआ है, ले लो वहां से उठा लो। बहुत खुश हो रहे थे जीवन ठाकुर, नहीं क्योंकि वो उस भाव से आए थे सबसे कीमती वस्तु मिल जाए मुझे, महादेव ने मुझे भेजा है आपके पास। अच्छा महादेव ने भेजा है, सौभाग्य की बात है, हमारे कृपा होगी शिव जी की, वहां कूड़ेदान से ले लो पारस पत्थर, कीमती वस्तु है सबसे। इसके बाद हरिनाम का धन है, फिर और कोई धन नहीं चाहिए उसको, फिर धन आएगा भी तो धन उसके लिए क्या है, तुच्छ है। त्यक्ता तूर्ण शेष मंडल पति श्रेणी सदा तुच्छवत भूतवा दीन गणेश कौ करुणया कौपीन कंसाशित गोपी भाव रथामृता दलहरी कल्लोल मग्न मुहोर वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल। चैतन्य महाप्रभु की कृपा देखिए, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के ऊपर इतने बड़े ऊंचे पद में थे, सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री थे, नवाब हुसैन शाह के राज्य में गौड़ देश के प्रधानमंत्री थे सनातन गोस्वामी, और वो वित्त मंत्री थे, प्राइवेट सेक्रेटरी थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी तुच्छ समझ के त्याग दिया और चल पड़े महाप्रभु के पास। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी ने त्याग दिया सब कुछ, इतने धनी परिवार के थे, 12 लाख रुपए सालाना आए कर देने के बाद, उसके बावजूद भी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए उनके हृदय में इतनी तीव्र लालसा, रघुनाथ दास को महाप्रभु से मिलने तेजी से भागे, भूल गए सब कुछ। वैराग कितना वैराग, देखिए वैराग का मतलब है कृष्ण से आकर्षण बढ़ना, कृष्ण से आकर्षण अगर बढ़ रहा है तो अपने आप वैराग आएगा, वैराग के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं वो गृहस्थ आश्रम में भी अगर होते हैं वो विरक्त रहते हैं, धन होने पर भी विरक्त रहते हैं, इसलिए माया का प्रभाव ऐसे भक्तों के ऊपर पड़ता नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद पारिवारिक जीवन में भी जो है हमेशा कृष्ण भावना भावित रहे, और सबको धन लूट जाने के बाद, व्यापार बंद होने जाने के बाद भी वो खुश हुए जब चिट्ठी मिली उनको कि चोरी हो गई है, प्रभुपाद बड़े खुश हुए कि अब मैं समर्पित हो पाऊंगा राधा कृष्ण की सेवा। प्रभुपाद ने कहा, क्या बोला प्रभुपाद ने, सब कुछ छीन गया था मुझसे, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मित्र सब छीन गए थे, आज देखो मुझे कितने सारे, कितनी बड़ी जो है समृद्धि प्राप्त हो गई है, कितना बड़ा परिवार मिल गया मुझे, पूरे विश्व भर में, पूरे पृथ्वी में परिवार है, पूरे पृथ्वी में प्रभुपाद की संतानें हैं, पुत्र हैं, पोते हैं, इतना बड़ा परिवार शिल प्रभुपाद जी को, सबको दे दिया प्रभुपाद जी को कृष्ण। और यहां देखिए क्या ऐश्वर्य बढ़ रहा है शिल प्रभुपाद जी की कृपा से, दिल्ली में देख लीजिए सबसे बड़ा प्रमाण है ये, एक से बढ़कर एक मंदिर बनते जा रहे हैं, चमत्कार देखिए, चमत्कार है कृष्ण का शिल प्रभुपाद जी का। कोई सोच सकता है एक ही स्थान में, एक ही दिल्ली में इतने सारे इमारतें खड़ी करने के लिए, उसको चलाना भी है, उसके लिए मैन पावर चाहिए, ये केवल तो हो सकता है महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, तभी संभव है ये। तो जैसे एक उदाहरण दिया जाता है भागवत, श्रीमद् भागवत में आता है उदाहरण ये, एक अंधा व्यक्ति जो है सड़क पर चल रहा है और साथ में उसके एक और व्यक्ति जा रहा है, सूर्य का प्रकाश है, एक रास्ता वो है, दो रास्ते हैं, एक रास्ता कौन सा है, जहां सूर्य का प्रकाश है, बहुत तेज धूप निकल रही है, मई जून का महीना है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, सड़क जो है तप रहा है गर्म एकदम, एक रास्ता वो है, और दूसरा रास्ता क्या है, परछाई है और बादल है ऊपर, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन सड़क पे क्या है, कंकड़ पत्थर है और कांटे हैं, चलने लायक नहीं है सड़क। तो इसलिए अगर वो व्यक्ति जो आपको दिखाने वाला है, उस अन्य व्यक्ति को ले जाने वाला है, अगर आपको उस रास्ते लेके जाता है जिस रास्ते में धूप है केवल, कांटे नहीं है, पत्थर नहीं है, तो उस उस व्यक्ति को दोष मत दी दिया, उस व्यक्ति को दोष मत दी दिए, क्योंकि आपका वो मित्र हितैषी है, वो जानता है आप छाया के रस्ते से जाओगे तो वहां पे पत्थर मिलेंगे आपको, कंकर मिलेंगे, कांटे मिलेंगे, तो वो आपका हितैषी है। इसे साधु जो है, वैष्णव जो है, जो हमारे अज्ञानता को काटते हैं, हमारे तमोगुण को काटते हैं, उसको विदीर्ण करते हैं, तो हमें उसका कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये कृपा है उनकी, ये कृष्ण की कृपा है वैष्णव के माध्यम से, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, महाराज प्रिय व्रत को कह रहे हैं कि ये कृष्ण की इच्छा है, भगवान की इच्छा है कि आप ये राज्य स्वीकार करें। और ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि जिसने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, जिसने मन को सही दिशा दिखा ली है और इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, तो वो पारिवारिक जीवन में रहे या वन में रहे, उसको कोई उसको अंतर नहीं पड़ता है, वो कहीं भी रह सकता है। क्योंकि क्या उस बंधन में बनता नहीं है, क्योंकि ऐसे जो शुद्ध भक्त है, इतना ऐश्वर्य प्राप्त करने पर भी वो इस ऐश्वर्य को जो है कृष्ण की सेवा में लगाने में सक्षम होते हैं। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो भी धन हमें मिलता है उसमें से 50% हमें कहां लगाना चाहिए, राधिका रमण की सेवा में लगाना चाहिए, श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं। अब नहीं लगाते वो अलग बात है, बोले टैक्स भी देना है कैसे 50% दे। और उसके कहने का मतलब यह है कि यह संभव है। कैसे संभव है, हमारे भक्त हैं वो रहते हैं उधर ईस्ट ऑफ कैलाश के एरिया में रहते हैं, और वो एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, साधु प्रशिक्षण भी करते हैं, उनका अपना परिवार भी है, लेकिन हर महीने प्रैक्टिकली 50% देते हैं, वो डोनेशन देते हैं प्रचार के लिए 50% देते हैं, वो एक्चुअली देते हैं। ऐसे वो धारणा भी है, उनकी अपनी फैमिली है, उनका अपना जॉब है और बड़ी कंपनी में अच्छा पोस्ट भी है, लेकिन जो कमाई होती है उनकी उसे 50% दे देते हैं कृष्ण की सेवा, कोई अटैचमेंट नहीं। तो ऐसे जो गृहस्थ है वो सन्यासी से कम नहीं है, बल्कि सन्यासी से बढ़कर है, देयर मोर देन सन्यासी। हफ्ते में 5 दिन प्रीशिंग में बाहर रहते हो, उनकी वाइफ भी बहुत डिटैच है, तो ये हो रहा है, संभव है। तो इसलिए वो कह रहे हैं, महाराज प्रियव्रत को कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप भगवान की शरण लीजिए, और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आप जब इस राज्य को स्वीकार भी कर लेंगे तो आपकी भक्ति दिन प्रतिदिन भगवान के लिए बढ़ेगी, कम नहीं होगी। प्रभुपाद जी वहां तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त जब जो है वो ऐसे सिमदारी को स्वीकार करते हैं, उनकी भक्ति जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती है कृष्ण के लिए, कम नहीं होती है, कम नहीं होती है। जो भी कृष्ण के लिए जिम्मेदारी लेता है, वो जिम्मेदारी लेने पर कृष्ण जो है ऋणी हो जाते हैं ऐसे भक्तों के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हम देखते हैं ठाकुर भक्ति विनोद को भी देखते हैं, इतना बड़े परिवार, उनका 13 संतानें थी भक्ति विनोद ठाकुर की, लेकिन उस परिवार में रहते वो भी वनवासक थे, उनकी पत्नी भागवती देवी भी वो वैष्णवी थी और उनकी सारी संतानें वैष्णव थे भक्ति विनोद ठाकुर की। चीफ मजिस्ट्रेट थे वो जगन्नाथपुरी में भक्तिनाथ ठाकुर, और केवल 3 घंटे विश्राम करते थे, ओनली 3 आवर्स, 3 घंटे 24 घंटे में 3 घंटे विश्राम करते थे और 21 घंटे लगे रहते थे सेवा, कभी कोर्ट की सेवा में और कभी अपनी साधना, कभी ले, कभी प्रचार, कभी कुछ, टोटली डिटैच। इतना बड़ा परिवार उनका चल रहा था नहीं, और मंथली इनकम भी कोई ज्यादा नहीं थी। जब वो हेड क्लर्क बने थे ओडिशा में तो उस समय उनकी इनकम जो है 150 रुपए थी, और एक समय स्कूल में टीचर थे तो उस समय 50 रुपए उनका इनकम था, 15 रुपीज, और हेडमास्टर जब बने तो इनकम 45 रुपीज। तो कहने का मतलब उस जमाने में खैर ये भी बहुत ज्यादा होता था धन, लेकिन कहने का मतलब ये है ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने इतना बड़ा परिवार चलाया, कैसे, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं इस कारण से। तो कहने का मतलब यह है किसी भी आश्रम में क्यों ना हो हमें शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, यही है सॉल्यूशन, यही है हर समस्या का हल, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। जैसे संत तुकाराम की कथा में आता है, संत तुकाराम के बारे में जानते हैं, बहुत सारी घटनाएं उनकी। तो संत तुकाराम जब वैकुंठ जा रहे थे देहू में उनका जन्म स्थान है, पूना से करीब 30 किलोमीटर की दूरी में। तो उनकी वाइफ, दो पत्नियां थी, एक पत्नी की मृत्यु हो गई और दूसरी पत्नी जो है वो कोई भक्त तो थी नहीं, लेकिन संभवतः गाड़ी चल रही थी। तो तुकाराम, संत तुकाराम के जीवन के अंतकाल में गरुड़ जी आए थे लेने के लिए, जानते हैं उनको, साक्षात गरुड़ जी में इसी शरीर समेत गरुड़ जी में बैठ के बैकुंठ गए थे तुकाराम जी, और लोगों ने देखा साक्षी, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको सपने में दीक्षा दी थी संत तुकाराम। तो गरुड़ जी पे बैठे लगे तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला, आप ही चलो वैकुंठ, क्या करना है अब। तो उनकी पत्नी क्या कहती है, देखिए उनकी पत्नी कहती है कि अभी तो मैं गर्भवती हूं, दूसरा जो है बच्चे छोटे हैं, और तीसरी बात अभी घर से मेरी माता ने मुझे भैंस दिया है नया नया, वो अभी दूध देने लगी है, उसको कौन संभालेगा, बच्चे अभी छोटे हैं, परिवार का ध्यान कौन रखेगा, आज जाइए वैकुंठ। अब उनको एक्चुअली नहीं पता था वैकुंठ मतलब वैकुंठ धाम, वो सोचने लगी किसी और शहर जा रहे शहर, वो भी क्लियर नहीं था उनको, लेकिन जो भी है शी वॉज नॉट रेडी टू गो, वो जाने के लिए तैयार नहीं थी। तो संत तुकाराम बोले कि कैसी माया, देखिए माया का प्रभाव देखिए, कि गरुड़ जी साक्षात बैठे खड़े हैं सामने। गरुड़ जी ने यहां तक बोला, गरुड़ जी से बोला कि और लोग आ सकते हैं, गरुड़ जी ने कहा मैं तो सब जितने भी गांव में आपके लोग हैं सबको लेके जा सकता हूँ, बहुत जगह है मेरे पास, लेकिन आएगा कौन, कोई नहीं आएगा, इतना आसान नहीं है संसार छोड़ना, जितनी आसक्ति बढ़ाएंगे उतने रहने की यहां संसार में इच्छा होगी, याद रखिएगा। आसक्ति ही कारण है बंधन का, आशा ही निराशा का कारण है, भागवत में भी दिया गया। तो संत तुकाराम ने कहा ठीक है अकेले ही जाना पड़ेगा मुझे, गरुड़ जी बैठे अकेले चले गए बैकुंठ चले गए। तो ये संत तुकाराम बहुत विरक्त वैष्णव थे, बहुत विरक्त। एक बार उनके घर में बहुत मतलब घर में गरीबी छाई हुई थी, पैसा था नहीं बिल्कुल भी, उनकी पत्नी जो है उन्हें कहा कुछ कर लो आप, व्यापार कर लो, कैसे खाएंगे बच्चे, वही घर कैसे चलेगा, हमेशा भजन में लगे रहते हैं आप, विट्ठल विट्ठल करते रहते हैं। तो उन्हें कहा, फिर उन्हें क्या किया, एक किसी मुनीम से व्यापारी से 200 रुपए ले लिए उधार, 200 रुपए कर्जा लेके, उन्होंने कहा ये 200 रुपए है आप लीजिए, कोई नमक का व्यापार कर लीजिए, तो घर में कुछ पैसा आएगा उसका मुनाफा आएगा तो घर चलेगा हमारा। तो 200 रुपए लेके चल पड़े हो पूना के पास कहीं गए, और भी व्यापारी थे साथ में, और व्यापारी ने सोचा रही क्या है ये तुकाराम भी, इनकी पत्नी इतनी परेशान है, नहीं अभी धन देके भेजा है, ये भी देखो लुटा देगा कहीं, लगा देगा विट्ठल की सेवा में उसको। तो 200 रुपए लेके चल पड़े, नवा का व्यापार हुआ, मुनाफा हुआ, और व्यापारियों ने भी मुनाफा काफी कमाया, और जाके फिर उन्होंने गुड़ भी बेचा, मुनाफे से फिर गुड़ खरीदा और गुड़ भी बेचा, उसे काफी मुनाफा हुआ। तो ये जब मुनाफा हो गया तो एक व्यक्ति को देखा ब्राह्मण को, ऐसे में गरीब ब्राह्मण, और उसके कंधे में किसी ने लकड़ी बांध के रखा हुआ था, बहुत भारी लकड़ी गर्दन के साथ, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई थी, बाल भी बड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देव क्या बात है, आप बड़े दुखी लग रहे हैं, रो रहे हैं, और साथ में एक सैनिक भी चल रहा है साथ में, क्या बात है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई मेरे पास जमीन थी, और गांव वालों ने जो है षड्यंत्र रचा और मुझसे जमीन छीन लिया, और तो और राजा से कहकर मुझे जेल भी भिजवा दिया, अब मैं जेल से बाहर निकलना चाह रहा था तो मुझे कहा गया कि आपको 300 रुपए देने पड़ेंगे जेल से छूटने के लिए, मेरे पास सब कुछ मिला के 250 रुपए रह गए थे, मैंने 250 नहीं 50 रुपए रह गए थे, तो 50 रुपए में फिर मैंने दिए और फिर छोड़ा तो गया मुझे, लेकिन इस हाल में छोड़ा गया, देखिए ये लकड़ी बांध दी है कंधे में, और राजा को चिंता ये है कि मैं कहीं भाग ना जाऊं, और साथ में सैनिक भी लगा दिया जो तंग करता रहता मुझे। तो संत तुकाराम के हृदय में जो है पड़ी दया आ गई, उनने कहा ये लो मेरे से ले लो 250 रुपए, और 250 रुपए जो कमाए में सारे दे दी। संत तुकाराम ऐसे थे, तो सारे पैसे दे दिए, वो बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण, ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से आप और भक्ति में आगे बढ़े, ऐसे वैष्णव का दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है। उसके बाद संत तुकाराम सोने लगे, अब मैं घर कैसे जाऊंगा वापस, अपनी पत्नी को चेहरा कैसे दिखाऊंगा मैं अपना, ये तो मेरा खाली है बिल्कुल, सारा धन दे दिया मैंने उस ब्राह्मण को। और जानते क्या हुआ, विट्ठल भगवान जो है संत तुकाराम का वेश धारण कर लिया उन्होंने, संत तुकाराम के रूप में विट्ठल भगवान गए उसके पास, व्यापारी के पास, उससे जो कर्जा लिया था वो कर्जा दे दिया, चुका दिया। उसके बाद फिर 5 सोने के सिक्के दे दिए किसको, एक व्यापारी को कहा दे, कहा कि आप जाओ ये मेरी पत्नी को जाकर दे देना। कौन, संत तुकाराम जो विट्ठल भगवान है, संत तुकाराम के वेश में थे, उन्होंने कहा उस व्यापारी को आप जाओ मेरी पत्नी को दे दो। तो उसने कहा कि मैं क्यों दूं, तुम खुद दे दो, तुम्हारी पत्नी है वो। तो संत तुकाराम ने कहा कि उसकी आंखें जब गुस्सा जब होती है तो उसकी आंखें इतनी बड़ी हो जाती है, मुझे बड़ा डर लगता है, मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। ये वो बोलेगी कि तुम भाई ये क्या 5 सिक्के लेके आए हो, केवल सारा लुटा के आगे पैसा, यही मुनाफा कमाया तुमने, तो ये मेरे से नहीं सहा जाएगा, आप जाके दे दो। तो वो 5 सोने के सिक्के लेके गया, पत्नी को जाके दे दे। पत्नी बड़ी खुश हो गई, बहुत ही कमाल हो गया, ये तो पहली बार तुकाराम जो है मेरे पति देव जो है कमा के लाए 5 सोने के सिक्के, ये तो कमाल हो गया, बड़ी खुश होने लगी। लेकिन फिर आसपास के लोग जो थे वो तरह तरह की बातें करने लगे, उन्हें कहा कि ये संभव ही नहीं है, ये 5 सोने के सिक्के कमाए होंगे, नहीं हो सकता है कि ये तुकाराम की सहायता स्वयं विट्ठल भगवान कर रहे हैं, पहले भी कई बार हो चुका है। और दूसरी बात ये है कि इसने जो पैसे कमाए होंगे ये तो किसी और को दे दिए होंगे इसने, ये संभव ही नहीं है इसके पास का पैसे आए। तो इस तरह की बातें करने लगे तो उनकी पत्नी सुन ली, हाँ बात तो सही लग रही है, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये सब तुकाराम, तो तुकाराम की सहायता जो है स्वयं विट्ठल भगवान ही करते हैं हमेशा। तो देखिए ये है, कहने का मतलब ये है कि संत तुकाराम इतने विरक्त व्यक्ति थे, एक बार वो खेत के सामने बैठे हुए थे, खेत के सामने बैठ के भजन कर रहे थे अपना, तो वहां एक व्यक्ति आया जिसका एक खेत था, उसने कहा अरे वाह तुम्हारे पास कोई काम नहीं है लगता है, तुम खाली हो पूरे बैठ के यहाँ पे, तुम कीर्तन करते रहते हो, नाम ले रहते हो भगवान, तुम एक काम करो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम ये बैठ के नाम लेते रहो, पर ये देखते रहो कि खेत में जंगली जानवर ना आ जाए, कोई पक्षी ना आ जाए, फसल खराब ना हो जाए मेरी। वो ठीक है, संत तुकाराम वहीं बैठ के भजन कर रहे थे अपना। तो फिर धीरे धीरे पक्षी आने लगे, जानवर आने लगे, और उसको याद आया कि भाई इसको सेवा दी गई है, इसको ये नौकरी मिली है, इसको भगाने के लिए भगाने लगे। फिर सोचने लगे यार ये तो अच्छी बात नहीं है, ये बेचारे सब भूखे हैं, ये पक्षी ये पशु सब भूखे हैं, इनको खाने को कैसे मिलेगा, मैं तो अपना भजन कर रहा हूँ मुझे प्रसाद मिल जाएगा, लेकिन इनका क्या होगा, ये तो अच्छी बात नहीं है, खाने दो। तो सारे खाते गए, फसल सारी खराब हो गई, वो व्यापारी आया, व्यापारी का पंचायत बुलाया जाए, ये सब लुटा दिया इसने, मैंने इसको इतने छोटा सा काम दिया था इसको बैठने के लिए देखने के लिए, और इसने क्या किया, कुछ किया ही नहीं। और फिर उसके बाद पंचायत बुलाई गई, पंचायत ने आज्ञा दी संत तुकाराम को कि भाई जितना भी इनका नुकसान हुआ है वो नुकसान जो है उसकी भरपाई आप करेंगे। तुकाराम सोने लगे, अरे मैं कहाँ से दूंगा पैसे, मेरे पास तो चवन्नी तक नहीं जेब में। फिर वो व्यापार जो जिसका जिसकी जमीन जमींदार जिसकी जमीन थी वो वापस आया उस खेत को देखने के लिए, उसने क्या देखा, खेत जो है फिर से हरा भरा है, फसल वैसे की वैसे ही है, तो फसल खराब हो गई थी, फसल वैसे की वैसे ही उगने लगी, सब कुछ ताजा हो गया, ये विट्ठल भगवान की कृपा थी। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपका विश्वास होगा भगवान में, हरि नाम में, तो कमी जो है भगवान पूरी करते हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम्, ये फैक्ट है। अगर केवल श्रद्धा हो, श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है, समर्पण पर निर्भर होता है, जहां श्रद्धा और समर्पण होगा भगवान सब कुछ आपको देंगे। देखिए मनुष्य जीवन जो है केवल भजन करने के लिए मिला है और परिवार चलाने के लिए नहीं, परिवार आप चलाइए लेकिन मेन हमारा उद्देश्य है क्या, भजन करना। अगर आप भजन करेंगे तो सारी व्यवस्था कृष्ण करेंगे आपके लिए, आप देखिए करके देखिए। इस बात में श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन श्रद्धा अगर नहीं होगी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो दिक्कत होगी आपको बहुत। श्रद्धा होनी चाहिए सबसे पहले, अगर श्रद्धा है शरणागति है, समर्पण है, तो कई कमी होगी। योगक्षेमम वहामि हम, भगवान गीता में कह रहे हैं इस बात में, शब्द में, श्लोक में, इस वाक्य में, भगवान के इस वाक्य में पूरी हमारी श्रद्धा, पूरा विश्वास होना चाहिए, तब संभव है। एक बार ऐसी हुआ, एक घटना एक और बताते हैं, नहीं कि सब तो कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी घटना है इनकी। तो एक बार घर में बहुत गरीबी है, खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, कपड़े भी पहनने के लिए नहीं है, और उनकी पत्नी के पास एक ही कपड़ा था पहनने के लिए। और नहाने गई, उन्होंने जो है दरवाजे के ऊपर कपड़ा लटकाया हुआ था, और उतने में एक गरीब औरत आई, बूढ़ी सी औरत, बाहर से निकल रहे थे, खुजा थी, शरीर उसका झुका हुआ था। तो उसने कहा कि आप तो संत महात्मा हैं, आप तो भक्त हैं भगवान के, मेरी हालत देखिए, मेरे पास पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है, धन नहीं है मेरे पास, बहुत गरीब हूँ, मेरी सहायता करिए ना आप, आपके पास पहनने के लिए ठीक से कपड़ा भी नहीं है। संत तुकाराम ने देखा बहुत बड़े कपड़ा लटक रहा है वहां पे दरवाजे के ऊपर, वो कपड़ा उठा के दे दिया उन्होंने। उनकी पत्नी अंदर से चिल्ला रही है, कपड़ा कहाँ है, कपड़ा कहाँ है, कपड़ा कहाँ है। और फिर वो चले गए, संत तुकाराम चले गए, अपना कपड़ा देके वो निकल गए बाहर, अपना मंदिर विट्ठल भगवान के मंदिर चले गए भजन करने के लिए। और पीछे क्या हो रहा पता नहीं, घर में कोई है नहीं, बच्चे भी कहीं बाहर गए हुए हैं, सब लोग इधर उधर व्यस्त है, बड़ी समस्या हो गई भाई, नहा रहे हैं अंदर और कपड़ा है ही नहीं, उनके बाद कपड़ा उठा के दे दिया इन्होंने। उस समय रिश्तेदार भी आ गए, और रिश्तेदार भी आ गए तो बोले, रिश्तेदारों की आवाज़ आ रही है तो अब तो बड़ी समस्या हो जाएगी ना, मैं बाहर निकल सकती हूँ, अंदर क्या करूँगी फिर, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। और उनके रिश्तेदार भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं तुकाराम के बाद, ते तुकाराम तो देखो कितना बेकार आदमी है, और अपने पत्नी का, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखता है, कुछ करता धरता नहीं है, विट्ठल विट्ठल करता रहता है पूरे दिन, घर की हालत देखो क्या बना के रखी है। उनकी सब आगे सास वगैरह सब आई हुई थी, वो सब गालियां दे रहे थे तुकाराम को। तो उतने में क्या हुआ, इससे पहले कि वो कमरे में आते, अंदर आके देखते, विट्ठल भगवान ने क्या किया, सुंदर सा एक पीला सा वस्त्र उन्होंने ऊपर से फेंका, किसको दिया, संत तुकाराम की पत्नी को दिया, स्नान कर रहे थे, तो ऊपर से कहां से आया कपड़ा, कमाल हो गया, ये तुकाराम लेके आया मेरे लिए, नहीं नहीं ये तो संभव ही नहीं, वो इतना बढ़िया कपड़ा कहां से ला सकता है। फिर भी जब पहन लिया, पहन कर जब बाहर आई, तो उनके रिश्तेदार जो है, उनकी जो रिश्तेदार, उनके जो परिवार के लोग थे, उनकी माता, उनके पिता सब आए हुए थे घर वाले, वो देख के हैरान हो गए, अरे तुम्हारे पास इतना बढ़िया कपड़ा है, ये तुकाराम ढोंगी व्यक्ति है, बाहर से भजन करता रहता है विठल विठल करके, ये देखो इसकी करतूत, असलियत तो ये है, कितने महंगे महंगे कपड़े छुपा के रखे इसने घर में। फिर बाद में कुछ लोग ये भी कहने लगे, नहीं ये तो विठल भगवान की कृपा है, जरूर ये कपड़ा भी जो है विठल भगवान ने ही दिया होगा। तो ये है, देखिए हमें पूरी श्रद्धा पूरा विश्वास होगा तो कोई कमी नहीं है किसी चीज की, और अगर मिल भी जाएगा सब कुछ आपको, तो आप बिल्कुल भी बंधन में फंसेंगे नहीं, हमेशा विरक्त रहेंगे, क्योंकि आपकी रुचि, आपका आकर्षण किस में है, नाम में है, नाम में आकर्षण बढ़ाइए बस। ना धर्म ना जन्म ना सुंदरीम कविता म जगदीश कामये, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भक्ता भक्ति रहे तो गीत होए। केवल भक्ति मांगिए भगवान से, हराधिकरमन से केवल सेवा मांगिए बस, आप देखिए चमत्कार देखिए। हरे कृष्ण, कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने निश्चित तरीके से समझाया। मेरा प्रश्न ये था भूली, जैसे आप बता रहे थे संत तुकाराम जी कथा बता रहे थे, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बात तो निश्चित रूप से है कि हमें पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित होना है, उन पर पूरी श्रद्धा रखनी है, लेकिन कभी कभी ये सुनकर जो है ऐसा देखा जाता है, कारण बन जाता है एक तरीके से, कि भक्त जो हैं वो भगवान का आश्रय तो लेते हैं, लेकिन भौतिक दृष्टि रूप से या फिर आध्यात्मिक दृष्टि रूप से भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इरिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। जैसे संत तुकाराम तो तीनों गुणों से ऊपर हैं, विशुद्ध भक्त हैं, लेकिन जब कोई साधारण भक्त ये करने की सोचता है तो वो क्या करता है कि अपनी भौतिक ड्यूटीज और आध्यात्मिक ड्यूटीज की अवहेलना करता है ये सोचकर कि मुझे अपना समय भजन में देना है, तो एक दूसरा एक्सट्रीम हो जाता है। तो कैसे इसको बैलेंस आउट किया जाए बोलिए, और कैसे
भक्तों को जो है ये कह रहे हैं कि कई बार भक्त जो परिपक्व नहीं है और अगर कई बार वो आध्यात्मिक जीवन में आते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं। पहली बात यह है कि हमने शुरू में बताया था कि ऐसे भक्तों को किसी की शरण में रहना पड़े। स्वतंत्रता भक्ति के लिए हानिकारक है। क्या है स्वतंत्रता भक्ति के लिए हानिकारक? जो भी स्वतंत्र होना चाहेगा वो फिर माया के प्रभाव में आ जाएगा। इसलिए भक्तों की जो शरण में रहेंगे तब ये समस्या नहीं आएगी। पहले हमें स्वीकार करना होगा कि हमें भक्तों की शरण में रहना है और भक्त जैसा कर रहे हैं कहते हैं वही हमें करना है। यही भक्ति है। भक्ति का मतलब है कि पहले शरण लेना, आश्रय लेना। श्रील रूप गोस्वामी ने बोला आदव गुरु पाद आश्रय। पहला क्या आश्रय लेना है? गुरु का आश्रय लेना है, वैष्णव का आश्रय लेना है। आश्रय लेने का मतलब है उनकी शिक्षाओं का पालन करना, उनके आदेश का पालन करना। तभी तो भक्ति है। भक्ति है ही नहीं जाना था वो भक्ति में नहीं गिना जाएगा। फिर वो सुकृति हो सकती है, भक्ति नहीं हो सकती। वैष्णव की शरण में रहकर ही भक्ति होती है। उनकी आगे का पालन करते हैं तभी वो भक्ति में गिना जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हम भक्त बने और हमें भक्तों की कैटेगरी में गिना जाए तो हमें किसी वैष्णव की शरण में रहना पड़ेगा। ये प्रोसेस है। जगदानंद पंडित जी जब चैतन्य महाप्रभु से बोल रहे थे मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, महाप्रभु ने क्या बोला उनको? आप जाइए। पहले तो तैयार नहीं हो रहे थे, फिर उन्होंने कहा ठीक है आप जाना चाहते हैं तो आप जाके वहां पर सनातन गोस्वामी की शरण में रहिए, उनका आश्रय लीजिए। तो हजार पंछी जो है वो खतरे में है। अगर आप भक्त समाज में आके आजाद बनना चाहते हैं ये खतरे की घंटी है। हमें किसी ना किसी के शेल्टर में रहना ही पड़ेगा और जैसे कहा जाए वैसे करें। भक्त की पहचान जो है वो सेवा से होती है। सेवा कर रहे हैं तो भक्त हैं, आप सेवा नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या है? भुक्त है। भक्त नहीं है, भुक्त है। तो हमें क्या बनना है हमें फैसला करना है। अगर हमें भक्त बनना है तो सेवा करनी पड़ेगी, जिम्मेदारियों को स्वीकार करना होगा, तभी तो भक्ति है। मैं तो भक्ति का आयम है, हमारी भक्ति है कि नहीं? तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन को एस्केपिज्म मत मानिए। ये कोई माया से बचने का कोई तरीका नहीं है, माया से बचने का कोई उपाय नहीं है कि हम भाग रहे हैं माया से, भाग रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में जाना चाहते हैं माया से बचने के लिए। इसे भगवद गीता में भगवान ने कहा ऐसा वैराग जो है वर्जोगुण का वैराग है। अपने कर्तव्यों को कष्ट समझ के भयभीत होकर कष्ट मान के कोई सब कुछ छोड़ देता है वो वैराग रासिक वैराग्य है, रजोगुण का वैराग्य है। नहीं कोई अगर फलों से अनासक्त होकर कृष्ण की सेवा को स्वीकार करता है और अपने कर्तव्य परायण रहता है तो वो सत्वगुण का है वो वैराग। तो वैराग का मतलब है कृष्ण की सेवा में लगे रहना, सिंपल सी बात। वैराग्य का मतलब है हमारी वैष्णव परंपरा में वैराग का मतलब है कि कृष्ण की सेवा को स्वीकार करना। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि वैष्णव इंद्र तृप्ति का त्याग करते हैं, मायावादी भी इंद्र तृप्ति का त्याग करते हैं। लेकिन एक और बात बताते हैं वो क्या, लेकिन मायावादी भक्ति से भी वैराग ले लेते हैं। ये डिफरेंस, मायावादी भक्ति से भी वैराग्य ले लेते हैं, हम भक्ति से वैराग्य नहीं लेते हैं। ये अंतर है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की।